Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Haan, tum jara naach ke dikhao to hum chhach pila denge. तो अच्छा भाई तुम नाचने की बात करते हो तो हम नाच भी देंगे और क्या। इसीलिए कृष्ण को नटवर वपु कहते। कृष्ण को क्या बोलते हैं? नटवर वपु हो करण यो हो करणिकारम बिभ्रत वासा कनक कसिक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान बेरो रद्र सुदया पूरयन गोप वृंदे ही वृंदारण्य सुभद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। इसी प्रकार के भगवान शिव को नटराज कहते। अब भगवान शिव ने कृष्ण से नाचना सीखा कि कृष्ण ने भगवान शिव से नाचना सीखा है? किससे नाचना सीखा है, कौन किसके गुरु है, ये तो अनुसंधान ही करना पड़ेगा भाई। क्योंकि जहां शिव भक्ति का प्रसंग आएगा तो हम शिव भक्त होंगे तो हम तो यही व्याख्या करेंगे कृष्ण ने भी शिव से ही नाचना सीखा है। समझ गए ना? तो आप वैष्णव लोग तो आपको नाराज हो, आपको बुरा लगेगा। तो इसीलिए हम कह देते हैं भाई शिव ने कृष्ण से ही नाचना सीखा। अब तो खुश हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, है? कृष्ण से सीखा शिव ने कि शिव से सीखा कृष्ण ने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शिव की जो लीला है वही कृष्ण की लीला है, कृष्ण की जो लीला है वही शिव की लीला है। कृष्ण और शिव दो अलग अलग होते तब ये प्रश्न होता कि किसने किससे सीखा है। कृष्ण उपाधि में जो तत्व है वही शिव उपाधि में विद्यमान है, और शिव उपाधि में जो तत्व है वही कृष्ण उपाधि में विद्यमान है। खाली भेद तो उपाधि का लेकर है, तो उसके अंदर जो तत्व है वो तो एक ही चीज है ना। हम वेदांती तो यहां तक कहते हैं स्त्री शरीर उपाधि में जो तत्व है वही पुरुष शरीर उपाधि में है, शरीर पुरुष शरीर उपाधि में जो चेतना है आत्मा है वही स्त्री शरीर उपाधि में है। चेतना में स्त्री और पुरुष का भिन्नता नहीं, स्त्री पुरुष की भिन्नता तो स्थूल शरीर के स्तर पर है। यदि यह भिन्नता है तो अन्नमय कोष की भिन्नता से भिन्नता है, लेकिन अन्नमय कोष में होने वाली भिन्नता से प्राणमय कोष में, मनोमय कोष में, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी चार कोष तो सेम है, बराबर है। इसीलिए कृष्ण से शिव ने सीखा कि शिव से कृष्ण ने सीखा, ये सब अनादि है, ये दोनों ही जगत गुरु है। हाँ, ये दोनों ही अनु जगत गुरु है तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई वैष्णव ये कहता है कि शिव ने भी कृष्ण से नाचना सीखा है तो हमको प्रसन्नता ही होती है, हमारे मन में खिन्नता नहीं होती है। और कोई शैव ये कहता हो कि कृष्ण ने शिव से नाचना सीखा है तब भी हमको प्रसन्नता ही होती है, हमारे मन में कोई खिन्नता नहीं होती है, क्योंकि हम सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि हम किसी एक संप्रदाय के एजेंट नहीं है, हम तो तत्व चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं, उपाधि को लेकर झगड़ा करने वाले व्यक्ति हम नहीं है। आकार और प्रकार को लेकर, विशेषणों को लेकर, उपाधि को लेकर चिंता कर झगड़ा करने वाले, विवाद करने वाले हम नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, एक बहुत पहले की बात है, प्रेम कुटीर में हम पहले इसी तरह जाया करते थे। मई महीना प्रेम कुटीर होता था मेरा, जून यहां होता था है? और हम, और अभी तो ब्रह्मलीन हो गए स्वामी विशुद्धानंद जी, हम दोनों का आगे पीछे चलता था। फरवरी में चेंबूर होते थे, नहीं मार्च अप्रैल, अप्रैल में चेंबूर, मई में प्रेम कुटीर, जून में प्रेमपुरी, हमारा ऐसा चलता था। और विशुद्धानंद जी का हाँ यहां मार्च में होता था, और इसी तरह हम मई में वहां होते थे, और इस तरह वो आगे आगे चलते थे, हम पीछे पीछे चलते थे। फरवरी में हम अहमदाबाद जाते थे, चेंबूर हाँ, तो अप्रैल में प्रेम कुटीर जाते थे वो, और हम इस तरह जाते थे। तो मई महीना हम प्रेम कुटीर में करते थे एक महीना। एक समय की बात है, हम कथा करके बैठे थे, दिन में आराम करते थे, तो आप लोग जानते हो, पुराने सत्संगी लोग जानते हैं, हमारे मेवा वाले थे ना, है? क्या नाम उनका, ना ना मेवा वाले, हाँ उनको मेवा वाले नाम भूल गया मैं, बड़े सज्जन, शिवो हम करते थे बड़े जोर से, शिवो हम करते हुए घर से निकलेंगे, शिवो हम करते हुए निकलेंगे, और सत्संग से निकलेंगे, शिवो हम करते, हॉल में आएंगे, शिवो हम, पतले थे। तो हमारे पास बैठे थे वो, तो कुछ इस्कॉन वाले संत भी हमारे पास आए थे, तो वो लोग भी बैठे थे। तो जब वह आए दयाराम, अब याद आ गया ना, बूढ़े हो तो बूढ़े तो हो गए लगता है, अब स्मृति में आया, दयाराम मेवा वाले, दयाराम काका बोलते थे वो। तो जैसे वो कमरे में आए, तो जोर जोर से शिवो हम करते हुए आए। तो वो कुर्सी में बैठे थे दो इस्कॉन के साधु, वो तो हरे कृष्ण हरे राम कहने वाले वो हरे राम हरे कृष्ण नहीं कहते, हरे कृष्ण हरे राम है वो थे। जब उन्होंने जोर जोर से शिव ओम शुरू किया, तो दोनों साधुओं ने भी हरे कृष्ण हरे राम कहने लग गए। मैं हंसता रहा, वो शिव ओम क्या जा रहा है, वो हरे कृष्ण हरे राम जोर जोर से कहना शुरू कर दिया। ये दोनों का जो नाटक हम देखते रहे वहां, हमने कहा ये देखो, दयाराम तो बेचारा अपने आदत से मजबूर है, वो बोलते रहते हैं बेचारा, बोलते थे। तो हुआ क्या, जब उन्होंने दयाराम ने मुझे प्रणाम किया, फिर उसके बाद उनके पांव छूने लग गए, तो छूने नहीं दिया, खड़े हो गए, बोले महाराज आप साधु हैं क्यों, हमको तो आपके चरण का स्पर्श करना है। बोले नहीं नहीं आप शिव हैं हम जीव हैं वो व्यंग किया, हम समझते हैं उच्च, उन्होंने उपहास किया, व्यंग किया, आप तो शिव हैं हम जीव हैं, शिव कैसे हमारे जीव का चरण छुए भाई। हमने कहा देख लो ये सब खत्म हो गया भाई, छूने नहीं दिया, और छूना नहीं दिया, हमारा नियम है, हम क्यों छूना देते हैं, हम वैष्णव हैं, या हमारा नियम है व्रत है, अपने चरण दूसरों को छूने नहीं देते, कह देते खत्म हो जाता, ये कहने की क्या जरूरत थी, आप तो शिव है साक्षात, हम तो जीव है, शिव जीव का चरण कैसे छुए। दयाराम काका ने कहा कि हम भी जीव ही हैं, बोले आपने अभी अभी कहा तो शिवो हम ले जी, हमने कहा ये विवाद शुरू हो गया भाई, तो थोड़े वो ऐसे कहते रहे, हम उठ गए और बाथरूम में चले गए, तो उसके बाद फिर वो लोग भी चले गए, वो बैठे जोर जोर से शिवम शिवम करने लग गए, वो कैसे सुनेंगे वो लोग। तो उसके सामने हरे कृष्ण हरे राम कहते हुए चले गए। ये सब सांप्रदायिक, ये दुराग्रह नहीं करनी चाहिए। हम समन्वयवादी है भाई। तो भृंग ऋषि की इच्छा से भगवान शिव नाचे थे, ये पुराणों में इसकी चर्चा है। शंकराचार्य ने उसका स्मरण किया, भृंगी भृंगी इच्छा नटनोत्कट। हाँ, करी मदग्राही, ये शिवजी के विशेषण। अब ये फिर शिवजी पर लागू होता है। भ्रमर भी करी मदग्राही है और शिव भी करी मदग्राही है। पुराण में प्रसंग आता है, भगवान शिव ने गजासुर को ही मारकर उसके खाल को उतार कर पहन लिया था, इसीलिए भगवान शिव का नाम है दंती त्वकृत सुंदरांबर धरे। ध्यान श्लोक में आता है दंती त्वक, दंती माने हाथी दांत वाला, दंती त्वक माने चमड़ी, कृत सुंदरांबर धरे, जिन्होंने हाथी की चमड़ी को उतारा और अपने बहुत सुंदर वस्त्र के रूप में धारण कर लिया, ये हो गए शिवा। ये हो गया क्या? करी मद, करी माने गजासुर, उसका जो मद है, मद माने घमंड, करी मदग्राही, उस गजासुर के घमंड को भगवान शिव ने देखते देखते एक सेकंड में ही त्रिशूल से उस मद को ग्रहण कर लिया, यानी उतार दिया और चमड़ी को उतार कर पहन ली। दंती त्वकृत सुंदराम वरधरे त्रैलोक के सारे हरे, मोक्षार्थम कुरुचित्त वृत्ति मचलम अन्यस्तु किम कर्म भी। स्फुरन माधवाल्लादो, एक समय की बात है, इस शिव और विष्णु का भी लीला बहुत विचित्र चलता है। वो एक समय भगवान शिव ने कहा विष्णु से, समुद्र मंथन के बाद जो अमृत प्रकट हुआ था, उस अमृत के लिए देवता और असुरों के बीच में सिना झपटी चली। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके असुरों को मोहित किया और अमृत का कलश असुरों के हाथ से छीन ली, मोहित किया सम्मोहित किया और कलश को हाथ में लेकर देवताओं को सारा अमृत पान करा दिया। ये बात भगवान शिव ने कहीं सुन ली, विष्णु ने ये काम किया है, चमत्कार किया है। तो जब भगवान शिव और विष्णु का मुलाकात हुई आमने सामने, तो भगवान शिव ने कहा कि भगवान, अपने असुरों के हाथ में गए हुए अमृत को छीन कर देवताओं को पिलाया, बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन ये सब किया कैसे महाराज आपने? तो भगवान ने कहा कि सब करना पड़ता है भैया, सब करना पड़ता है। मोहिनी रूप धारण करके हमने वो काम किया, मोहिनी रूप धारण करके। हां, सारे असुर लोग मोहित हो गए उस रूप को धारण किया तो हमने, देखते ही वो तो पागल हो गए असुर, तो वो तो अमृत को तो भूल गए, सभी लोग मेरे रूप को देखकर आहा आसक्त तो हो गए, वाह क्या रूप है। ये समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत का घड़ा, ये तो साक्षात अमृत का घड़ा है, देखो क्या सुंदर अमृत का घड़ा खड़ा है यहां। हाँ, सब लोग मोहित हो गए। तब हमने कह दिया ये कलश हमको दे दो, हम बांटेंगे। असुरों ने कहा कि हाँ चलो तुम बांटना, लेकिन ईमानदारी से बांटना है। बोले हाँ हाँ ईमानदारी से बांटेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। हमको बेईमानी करना ही नहीं आता है, भगवान को बेईमानी करना आता है? है बेईमानी तो जीवात्मा करता है कि परमात्मा? और जीवात्मा को बेईमानी करना सिखाया किसने? बिंब बेईमानी करेगा तभी ना प्रतिबिंब बेईमानी करता है। बिंब प्रतिबिंब का सिद्धांत क्या है? बिंब बेईमानी करेगा तो प्रतिबिंब स्वतः बेईमानी करेगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं हम ईमानदारी से तुमको पिलाएंगे। बैठो लाइन लगाकर, पटापट लाइन लगाए। एक तरफ देवता लोग बैठो, एक दूसरी तरफ असुर लोग बैठो बैठे। तो पहले हमारे तरफ बांटना? बोले हां पहले तुम्हारे तरफ ही आकर बांटेंगे, असुरों की तरफ गए। तो पहला जो असुर बैठा था अमृत का कलश लेकर वहां गई मोहिनी, हैं भगवान विष्णु गए। तो असुर तो दारू पीकर आया था और आगे बुरा नहीं मानना तो कह दूं, दारू पीकर आया था, लहसुन खाकर आया था, प्याज खा के आया था। दारू के साथ लहसुन प्याज का पकौड़े भी तो खाया होगा ना वो। तो दुर्गंध आ रहा था उसके शरीर से, है बुरा नहीं मानना हो आप लोग। तो दुर्गंध आ रहा था, मोहिनी ने कहा कि ये क्या हो दुर्गंध आ रहा है, तुम क्या दारू पीकर आए हो? बोले हां। तुम क्या लहसुन प्याज खा के आए हो? बोले हां। तो ये अमृत जैसे चीज को खाने के लिए पीने के लिए तो पहले नहा के आओ, शुद्ध होकर आओ, तभी ये खाने को मिले। सुबह नहाए कि नहीं? और दारू पीने वाला क्या नहाएगा? पंचामृत खाने वाला वो नहाएगा? नहाने की चिंता, दारू पीने वाला नहाने की चिंता करेगा कि पंचामृत खाने वाला नहाने की चिंता करेगा? क्योंकि उसको पंचामृत पान करना है, बिना नहाए पंचामृत कैसे खाएगा, पूजा कैसे करेगा? पूजा ही नहीं करेगा पंचामृत बनेगा कैसे? इसलिए वो पहले नहाएगा। वो दारू पीने के लिए क्या नहाने की है? बोले नहाया नहीं है, जब तक नहीं नहाओगे अमृत पान नहीं करने को नहीं मिलेगा, जाओ। सब लोगों ने बोले हां हमारे हमारी जाति ये असुर लोग, तुमने नहाया नहीं, तुमने नहा लिया नहीं, तुमने नहा लिया नहीं, जाओ पहले तो ब्रश करो, दातुन करो, फिर नहाओ अच्छी तरह, मुख से भी ये दुर्गंध जाए, शरीर से भी ये दुर्गंध जाए, फिर शुद्ध वस्त्र पहनकर धारण करके आओ, तब फिर अमृत पान करना। ठीक है भाई, लेकिन जब तक हम नहीं आगे बांटना नहीं है? बोले नहीं बांटेंगे, तुम आओ। तुम मुझे विश्वास नहीं करोगे? बोले हां हम विश्वास करते भाई। जैसे असुर गए नहाने के लिए, भगवान ने शुरू कर दिया बांटने, है इधर बांटने शुरू कर दिया। एक ने देख लिया कि ये तो बांटना शुरू कर दिया, गड़बड़ हो गया। वो तो नदी में पहुंचकर नहाकर कपड़ा बदलने से पहले ही रास्ते में से कपड़े बदल लिए और आकर सूर्य और चंद्र के बीच में आए, देवता जैसे ही बनकर बैठ गया। तो आप लोगों ने भंडारा में देखा होगा, साधुओं के भंडारा में दाल राम दाल राम दाल राम दौड़ते हैं ना बाल्टी लेकर, सब्जी राम सब्जी राम सब्जी राम दौड़ते हैं, है पूरी राम पूरी राम, पानी राम जल राम जल राम, बांटना शुरू करते दौड़ते 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 है। अब कुंभ मेले में तो एक ही पंक्ति में पांच पांच हजारों को एक ही साथ खिलाना पड़ता है साधुओं में, है अब तो दौड़ेंगे नहीं तो कैसे होगा वो। तो इसी तरह भगवान जो है मोहिनी अमृत राम करते ही देवताओं के थाल में अमृत बांट बांट के दौड़ रही थी। तो वो बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा हुआ था, उसके थाल में भी उन्होंने डाल दिया, विचार ही नहीं किया। उन्होंने सोचा सभी देवता बसे बैठे हैं। जैसे उसके थाल में वो अमृत गिरा कि उसने तो पीना शुरू कर दिया। वो ब्रह्मार्पण मंत्र भी नहीं बोला, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थम भिक्षाम देहि च पार्वतम। आपको वैराग्य क्यों नहीं होता है? आप लोगों की समस्या है कि नहीं महाराज? वैराग्य नहीं होती, वैराग्य नहीं आता। क्यों नहीं आता वैराग्य? खाते समय में प्रार्थना करके खाओ, अन्नपूर्णा से प्रार्थना करो, ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे पार्वती मुझे भिक्षा दे दो। किसके लिए? ज्ञान और वैराग्य की अभिवृद्धि के लिए मुझे भिक्षा दे दो। अब ये प्रार्थना करके खाओगे तब ना ज्ञान वैराग्य की अभिवृद्धि होगी। तो आप लोग तो थाल में एक पकौड़ा आया वो ही पहले खा लिया, फिर उसके बाद दाल आई तो उसको चम्मच से खाना शुरू कर ही दिया पाट, दाल कटोरी में आई कि खाना शुरू कर दिया। अरे भाई सब कुछ जो पका हुआ है उस पूरा कटोर सामने आवे, उसके बाद हाथ में जल लेकर पानी के घुमाओ, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस तरह पंच प्राणाहुति यज्ञ करो, प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पंच प्राणेभ्य स्वाहा। मंत्र पढ़ो, पंच प्राणाहुति यज्ञ करो, तब जाकर वो अन्न शुद्ध होगा, तब उस शुद्ध अन्न से चित्त शुद्ध होगा, तब जाकर ज्ञान वैराग्य की अभिवृद्धि होगी। तो हम लोग तो वो करते नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं असुर भाव अंदर है। असुर शब्द का अर्थ ही शंकराचार्य जी ने किया है, असुसु इंद्रियेषु प्राणेषु इंद्रियेषु रमंती इति असुरा। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो भोजन करे उसका नाम असुर। प्राण की रक्षा के लिए भोजन कर रहे हो कि इंद्रिय की तृप्ति के लिए भोजन कर रहे हो, बोलो? है प्राण की रक्षा के लिए भोजन किया जा रहा है कि जिह्वा की स्वाद तृप्ति के लिए भोजन किया जा रहा है? लो जी, क्योंकि हम लोग तो स्वादिष्ट भोजन चाहिए, जिह्वा को जो अच्छा लगे वो। कुछ साल पहले कुछ गुजराती माताएं काठमांडू गई थी, पोखरा नेपाल गए थे, तो आश्रम में अब रोज रोज, क्योंकि हम लोग तो दाल में गुण को कम डालते नहीं है, तो हम लोग तो डालते नहीं है, भारतीय उत्तर भारतीय दाल, तो रोज रोज वही दाल सादा दाल खा के कंटाल गए। तो एक माताजी बोलती आज दाल मैं बनाऊंगी। कैसे महाराज? बोले आज गुण कोकम डालकर बनाएंगे। हमने कहा कोकम तो मिलेगा नहीं यहां। बोले नींबू तो मिलेगा। गुण? बोले चीनी डालेंगे नींबू डालेंगे, हो गया काम। अरे भाई प्राण रक्षा के लिए जो खाना आया खाओ, ब्रह्मार्पण करके है तो वह जो है जो बीच में बैठे था सूर्य और चंद्रमा के, उसको तो ब्रह्मार्पण करना था नहीं, वो तो झट उठा लिया और पीना शुरू कर ही लिया। सूर्य ने देखा ये क्या बात है, ब्रह्मार्पण ब्रह्म अभी किए बिना खा रहा है, ये कहां से आ गया ये नमूना? देखा तो ये तो असुर, भगवान को इशारा किया ये आ गया, ये तो पान कर लिया उसे, नमः पार्वती पते हुई नहीं कि गाना शुरू कर दिया। हमारे आश्रमों में तो अनुशासन है, खाने से पहले सब कुछ बंट जाए तब फिर नमः पार्वती पते हो तब शुरू करो, और खा लेने के बाद फिर सबने खा लिया तब फिर नमः पार्वती पते हो तब फिर उठो, एक साथ शुरू करो, एक साथ उठो, यह अनुशासन है आश्रम की। तो देवता तो अनुशासित थे कि मोहिनी सब बांटेगी, बांटने के बाद फिर नमः पार्वती पते हर बोलेगी तब शुरू करेंगे। अब उसको तो वो पता ही नहीं था, क्योंकि असुरों के संप्रदाय में तो वो था नहीं, वो तो आया पीने शुरू कर दिया। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, लेकिन तब तक गर्दन से नीचे उतरी गया था, मरा नहीं। तो देवताओं ने कहा कि तू अमृत पान कर लिया है, अब तू हमारे जाति का हो गया, तो अब जाना नहीं असुरों में, तुम्हें हम भाग दे देंगे, देवता सारा तुम्हारी पूजा होगी। तो वही उनकी पूजा शुरू हो गई, देवताओं में उनकी गणना हो गई, राहु केतु भी है। तो अभिप्राय यह है कि विष्णु और शिव जी के बीच में यह सब होता रहता है। तो भगवान शिव ने कहा कि अच्छा, ऐसे मोहनी रूप दिखाकर तुमने अमृत बांटा? बोले हां, तो मुझे भी दिखा दो, मोहिनी रूप मुझे भी दिखाओ। बोले महाराज, ये आप जैसों के लिए रूप दर्शनीय नहीं है। हाँ? बोले नहीं नहीं, हमको तो देखना है। चलो देख लो भाई। तो भगवान शिव के आग्रह पर भगवान विष्णु ने दोबारे मोहिनी रूप दिखाया, और ऐसा मोहिनी रूप दिखाया कि शिव पागल हो गए। ये तो आप लोगों ने सुना है ना, पागल हो गए, अब क्या करें? तो मोहिनी भागी, शिव भी भागे पीछे पीछे, भागे भागे, दोनों भाग रहे। परिणाम क्या हुआ? एक बेटा पैदा हो गया। है सच्ची बात कह रहा हूं, गप नहीं कर रहा हूं। एक बेटा पैदा हुआ, उस बेटे का नाम है अय्यप्पा स्वामी। अय्यप्पा स्वामी दक्षिण भारत में अय्यप्पा स्वामी है ना। हाँ, अय्यप्पा स्वामी काले कपड़े पहनते हैं, उनके दर्शन करने केरला प्रदेश के वो पहाड़ के चोटी में मंदिर है सबरीमाला, अय्यप्पा स्वामी का बहुत मानते हैं। अय्यप्पा स्वामी को वेद में अय्यप्पा स्वामी की चर्चा है, वो जैसे गणेश की चर्चा वैसे ही अय्यप्पा स्वामी की चर्चा है। वैदिक देवता है ये अय्यप्पा, पौराणिक नहीं है। हालांकि उनकी जन्म की बात तो पुराण के इस प्रसंग से हुई है, लेकिन है वैदिक। वेद में अय्यप्पा शब्द नहीं है, अय्यप्पा तो साउथ इंडियन उन्होंने शब्द प्रयोग किया। वेद में शास्ता देवता के नाम पर, ग्राम देवता के नाम पर उनकी चर्चा है। हम जो ग्राम देवता बोलते हैं ना, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वही शास्ता देवता, ग्राम देवता, उनको हरिहर पुत्र बोलते हैं। हाँ, अय्यप्पा स्वामी, स्वामी शरणम अय्यप्पा, अय्यप्पा स्वामी शरणम, हरिहर पुत्र शरणम, वो लोग बोलते हैं, ये नारा लगाते रहते हैं। हरि और हर, विष्णु और शिव द्वारा जन्म पैदा हुए हुए हरिहर पुत्र। कई बार ऐसा हुआ कि शिव जी की इच्छा अनुसार विष्णु जी और विष्णु की इच्छा के अनुसार शिव जी। इसी तरह एक बार भगवान शिव ने जब नृत्य किया था तो भगवान विष्णु को भी नृत्य देखने की इच्छा हुई। महाराज मैं तो नाचने जानता नहीं, कृष्ण था तो नाचा था, विष्णु हो गया तो नाचा नहीं, नाचने जानता नहीं हूं। विष्णु नाचे हैं ये कहीं सुनने में आया है? हाँ, तो आपने तांडव नृत्य किया है तो मुझे भी दिखा दीजिए। तो बहुत आग्रह किया तो भगवान शिव विष्णु के सामने भी नाचे हैं। माधवाल लादव, ये माधव माने विष्णु, उनके आह्लाद, उनके प्रसन्नता के लिए जो नाचते रहे वो उसका नाम हो गया स्फुरन माधवाल्लाद। नादयुत, जैसे भ्रमर बसंत ऋतु आने पर नाचता है, वैसे भगवान शिव विष्णु के आग्रह पर, शिव विष्णु के आग्रह पर नृत्य करते थे। नादय उतो, जैसे भ्रमर गुंजायमान करता हुआ चलता है उसी तरह भगवान शिव सतत प्रणव का उच्चारण करते हुए विचरण करते हैं। नादव है, समझे नहीं, उसी को अनाहद बोलते हैं। अनाहद षड़ चक्रों में से एक चक्र है अनाहद, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत। मूलाधार में गणेश, समझे कि नहीं, स्वाधिष्ठान में ब्रह्मा, मणिपुर में विष्णु, अनाहत में शिव। षट चक्र की चिंतन करते समय अनाहत चक्र में शिव जी का निवास है। विशुद्ध में जीव, विशुद्ध चक्र में जीव का निवास है, अनाहत चक्र में शिव का निवास है, और आज्ञा चक्र में गुरु का निवास है। आज्ञा चक्र ये, यहां गुरु का निवास है, और सहस्रार में परम शिव का निवास है, जिसको वेदांत शुद्ध चैतन्य ब्रह्म कहता है। निरुपाधिक सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म चिन्मय चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का निवास सहस्रार में है। और चक्रों में सभी सोपाधिक है, निरुपाधिक सहस्रार में।